السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اذان دے دیں.
اللہ اکبر.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. احمدیت کی دوسری صدی شروع ہونے میں اب تھوڑا عرصہ باقی ہے، جہاں میں اس سے پہلے مسلسل بعض اخلاقی اور روحانی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلاتا رہا ہوں. آج کے خطبے میں میرا خیال ہے کہ انتظامی ذمہ داریوں کی طرف بھی کچھ توجہ دلاؤں، کیونکہ جوں جوں یہ صدی یعنی اگلی صدی قریب آ رہی ہے، بہت سے ایسے انتظامات ہیں جو ہمیں اس صدی کے آغاز سے پہلے کرنے ہیں، کیونکہ جب ہم صدی میں انشاءاللہ تعالی داخل ہو جائیں گے تو اس وقت موقع کی اور وقت کی ایسی ضرورتیں ہوں گی جو ہماری توجہات کو الجھا لیں گی. اور جب تک اس صدی کے آغاز سے پہلے ہم انتظامات مکمل نہ کر لیں، ہرگز بعید نہیں کہ خامیاں باقی رہ جائیں. اپنی پوری کوشش کرنے کے بعد بھی یقیناً خامیاں باقی رہیں گی، کیونکہ یہ بشریت کے لازمی تقاضے ہیں. لیکن ایسی خامیاں جو کوشش کی حد تک سب کچھ کر گزرنے کے بعد رہ جاتی ہیں، ان کا علاج دعا ہے. اور ویسے تو ہر بات کا علاج دعا ہی ہے، لیکن اس صورت میں خدا تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کی ضمانت بھی ہے. یعنی ایسی دعا جو انسان اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچانے کے بعد مزید خدا تعالیٰ کی طرف جھکتے ہوئے مانگتا ہے، اس کی قبولیت کے ان دعاؤں کے مقابل پر بہت زیادہ امکانات ہیں جو دعائیں بغیر کوشش اور بغیر محنت کے عدم توجہ کے بعد کی جاتی ہیں. آپ ایسے طالب علموں کو بھی جانتے ہوں گے جو سارا سال کچھ نہیں پڑھتے اور آخری دنوں میں پھر اس قدر دعاؤں پہ زور دیتے ہیں کہ جو وقت ان کو کتابوں کے مطالعہ میں صرف کرنا چاہیے وہ سجدوں میں صرف کر دیتے ہیں، اور خدا کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خدا سے رحم کی توقع رکھتے ہیں. ہر چیز کا ایک وقت ہوا کرتا ہے، خدا تعالیٰ نے ہر ذمہ داری کے دائرے مقرر فرما رکھے ہیں، ان دائروں کے اندر رہتے ہوئے حد استطاعت تک ذمہ داریاں ادا کرنا انسان کا کام ہے. پھر جو کمزوریاں باقی رہ جاتی ہیں، جو خلا رہ جاتے ہیں، ان کو پور کرنا خدا تعالیٰ کا کام ہے اور بندے کا کام نہیں ہے. یعنی خدا کا کام وہاں بھی شروع ہوتا ہے، وہاں بھی رہتا ہے جہاں بندے کا کام ہے، لیکن جہاں بندے کا کام ختم ہو جاتا ہے وہاں سے جب خدا کا کام شروع ہوتا ہے تو تقدیر خاص جاری ہوتی ہے، اور وہ دعاؤں کے نتیجے میں جب جاری ہوتی ہے تو انسان کو اعجازی کام دکھاتی ہے. تو اس لیے جہاں تک انسانی کوشش کا تعلق ہے، میں جماعت کو یہ نصیحت کرتا ہوں اسے اپنی حد استطاعت تک پہنچا دیں، ان کناروں تک پہنچا دیں جن سے آگے خلق کی حد ختم ہو جاتی ہے اور خالق کی حد شروع ہو جاتی ہے. پھر دعائیں کریں اور پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آپ کے کاموں میں کتنی برکت بڑھتی ہے. جہاں تک صد سالہ جبلی کے کاموں کی مختلف شقوں کا تعلق ہے، یہ تو بہت زیادہ ہیں اور ممکن نہیں ہوگا میرے لیے کہ ایک یا دو یا تین خطبوں میں بھی ان تمام شقوں کو بیان کر دوں، اس سارے پروگرام کو آپ کے سامنے اثر نو رکھوں. جہاں تک جماعتوں کی انتظامیہ کا تعلق ہے، تمام دنیا کے ممالک میں خدا تعالیٰ کے فضل سے جن کی تعداد اب 118 یا 119 ہو چکی ہے، तमाम हदायतें जारी कर दी गई हैं और उनकी याद दहानियां भी जारी की जा रही हैं। लेकिन हमारे मुख्तलिफ ममालिक में मुआशरों के असरात के नतीजे में रद्द अमल मुख्तलिफ हुआ करते हैं। बाज ममालिक की जमातों से खुदा तआला के फजल से बड़ी मुस्तैदी के जवाब आते हैं, फौरन तवज्जो करते हैं, फौरन हक्कुल मकदूर कार्रवाई करते हैं, फिर उसकी इत्तला भी देते हैं। बाजों की तरफ से रद्द अमल बहुत ढीला और सुस्त रौ है। इसलिए आज जो दो महीने के करीब अगली सदी को शुरू होने में वक्त बाकी है, मैं उम्मीद रखता हूं कि इन सुस्त रौ जमातों तक भी ये बात पहुंचकर उन पर असरअंदाज हो जाएगी और अब मजीद वो किसी कोई वक्त भी सुस्ती में जाया नहीं करेंगे। सारी जमात को इस काम में हिस्सा लेना है, लेकिन जहां तक मेरा इल्म है अभी तक तमाम जमात को उसकी जिम्मेदारियों से मुंतजमाने मुतले नहीं किया, यानी हर मुल्क की मुंतजमाने मुतले नहीं किया। चंद दिन हुए अमीर साहब इंग्लिस्तान तशरीफ लाए थे, उन्होंने मुझे वो हदायतनामा दिखाया जो इंग्लिस्तान की अफराज जमात की रहनुमाई के लिए वो जारी करने वाले थे। तो मुझे खुशी हुई कि एक अच्छा मुस्बित इकदाम किया गया है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो समझानी पड़ती हैं। महज तहरीरी तौर पर इत्तला देना काफी नहीं हुआ करता, इसलिए ऐसी जमातों में जहां अमूमन तालीम का मेयार बुलंद है, मसलन हिंदुस्तान है, और खुदा तआला के फजल से जहनों में बिलअमूम जिला पाई जाती है, ऐसी जमातों में भी समझाना जरूरी है। वरना आप खतों के जरिए और तहरीरों के जरिए अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकते। मैंने तो देखा है कि बाद बातें तहरीरन समझाई जाएं, फिर बुलाकर समझाई जाएं, फिर जब दोबारा पूछा जाता है तो फिर भी खामियां रह जाती हैं। इसीलिए हजरत अकदस, यानी इस बुनियादी इंसानी फितरत को समझते हुए हजरत अकदस मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक ये था कि जब हदायात जारी फरमाते थे तो उन हदायात को खुद दोहराते थे, फिर तीसरी मरतबा समझाते थे, उसके बाद फरमाया करते थे कि अब मुझे ये हदायात दोबारा सुनाओ ताकि मैं मालूम करूं कि किस हद तक तुम मेरी बातों को समझ सके हो। बचपन में हजरत साहबजादा मिर्जा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारी तरबियत में एक बड़ा अहम किरदार अदा किया है, और वो ये था कि रोजमर्रा की जिंदगी में सबक देने के लिए आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाकयात सुनाया करते थे और उनसे हमें सबक देते थे। चुनांचे ये बात भी मैंने एक मरतबा नहीं, दो मरतबा नहीं, बारहा हजरत मिर्जा बशीर अहमद साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुनी। आपका तरीक ये था कि बच्चों को सैर पर कभी साथ ले गए या घर में मुलाकात के वक्त छोटी छोटी बातें शुरू कर दी तरबियत के अमूर से मुतल्लिक, लेकिन हर बात में हवाला सीरत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुआ करता था। तो ये बात जो मैंने उनसे सीखी है ये मैं आज आपको सिखा रहा हूं। इस तरीक को अपनाएं और इस तरीक के मुताबिक अपने बच्चों की भी तरबियत शुरू करें, उनको बताएं कि किस सदी में दाखिल होने वाले हैं, उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको उनसे पूछें कि वो कौन सा ऐब तुम में पाया जाता है, कौन सी बद आदत है जो तुम छोड़ दोगे, और इस पहलू से सबसे ज्यादा झूठ पर जोर दें, झूठ के दफा करने, झूठ के कला कमा करने पर। अब बच्चों से आप जब पूछेंगे तो शायद कोई बच्चा ये ना तस्लीम करे कि मैं झूठ बोलता हूं, और जो बच्चे झूठ बोलते हैं वो तस्लीम भी कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बात तो ये जरूरत सच्चे बच्चे को होती है कि वो अपनी कमजोरियों को तस्लीम कर ले। लेकिन जब उनको प्यार से आप समझाएंगे तो ऐसे मौके पेश आएंगे जहां आप उनको नुमाया तौर पर बता सकते हैं कि इस लतीफे में जो तुमने बात कही है ये गलत है और ये झूठ की किस्म है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को भी तुम झूठ समझते हुए ये अहद कर लो कि अगली सदी में दाखिल होने से पहले मैं इस बद आदत को तर्क कर दूंगा। झूठ पर आप जितना गौर करेंगे आपको मालूम होगा कि इसकी बेशुमार किस्में हैं और बहुत से सच्चे आदमी भी झूठ की बाज किस्मों के साथ जिंदा रहते हैं और उनको पता भी नहीं लगता कि बाज अपनी जिंदगी के बाज दायरों में वो झूठे हैं। लतीफा सुनाते वक्त यानी ऐसा लतीफा जो वाकयात पर मबनी हो उसको उसकी ज़ेबाइश के लिए जो वो वालगा अमीजी करते हैं वो झूठ हुआ करता है। अगर लतीफा फर्जी हो तो वो तो उसमें तो झूठ का कोई सवाल ही नहीं, लेकिन किसी शख्स के मुतल्लिक ये वाकया बयान करना कि उसने ये बात कही थी और उसमें ज़ेब दास्तां की खातिर अपनी तरफ से बातें घड़ के दाखिल कर लेना बाज़ औक़ात झूठ ही नहीं बल्कि अपने भाई की तहकीर का मूजिब बन जाता है और एक बदी नहीं बल्कि दो बदियां इकट्ठी हो जाती हैं। और मैंने देखा है कि बच्चों में अगर शुरू से ही इस आदत को रोका ना जाए तो बड़े होकर यह आदत बड़ी भयानक शक्ल इख्तियार कर लेती है। झूठ और तकब्बुर और इस्तेहज़ा ये सारी चीजें इकट्ठी पैदा होती और बढ़ती और पनपती हैं। तो इसलिए इन अमूर पर तफसील से आपको नजर डालनी होगी और बच्चों की तरबियत में इन बातों को पेश नजर रखते हुए उनको समझाना होगा कि देखो आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को नसीहत फरमाई थी कि अगर तुमने कुछ एक ही बात छोड़नी है एक ही बदी छोड़नी है तो झूठ को छोड़ दो। और फिर वो मिसाल आप बयान कर सकते हैं कि किस तरह से रफ्ता रफ्ता उसकी सारी बदियां तर्क हो गई और झूठ छोड़ने के नतीजे में वो दूसरी बदियां छोड़ने पर मजबूर हो गया। इसीलिए कुरान करीम ने शिर्क की निजासत के साथ झूठ को मिसाल बयान फरमाई है और इकट्ठा बयान किया है। वाकया यह है कि झूठ तमाम गुनाहों की जड़ है और इस जड़ को तलफ कर दें तो यकीन जरूरी नहीं कि एकदम सारा दरख्त जमीन पर आ गिरे, लेकिन रफ्ता रफ्ता आप देखेंगे कि जिस तरह जड़ों की दरख्तों की जड़ें बीमार हो जाती हैं और मर जाती हैं तो पहले पत्तों पर फिर शाखों पर फिर फूटने वाली कोंपलों पर उनके असर जाहिर होने शुरू होते हैं और बाज़ दफा बाज़ दरख्त कई कई महीने में मरते हैं और जमींदार बेचारे को पता ही नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। बाद में जब कभी वो जरा जोर से तने को हिलाए तो सारा जरा तना ही हाथ में आ जाता है, उसकी जड़ें खाई गई होती हैं। तो झूठ की जड़ों के साथ ये सलूक करें क्योंकि झूठ की जड़ें सब बदियों की जड़ें हैं और जब आप इस बदी को अपनी सोसाइटी से निकाल के बाहर फेंक देंगे उखेड़ देंगे तो अल्लाह ताला के फजल से उसके नेक नताइज फौरन ना भी हों तो बिल आखिर रफ्ता रफ्ता जरूर जाहिर होंगे। इसी तरह बच्चों को हजरत अब्दुल मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरें पढ़ाने की तरफ मुतवज्जे हों, मसलन अलफजल में जो बार बार हर रोज इख्तबासात शाया होते हैं वो इदारिया की तरफ से बड़ी मेहनत के बाद मुंतखब किए जाते हैं और बहुत ही पुरअसर हैं और वक्त की जरूरत को पूरा करने वाले हैं। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ उनका जो असर पड़ सकता है वो आपकी लाख तकरीरें भी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए बच्चों को उन इख्तबासात की तरफ मुतवज्जे करें। हमारे यहाँ मगरबी दुनिया में और इसी तरह अफ्रीका में और मशरक़ के ममालिक में बहुत से अहमदी हैं बल्कि अक्सर अहमदी हैं जो उर्दू नहीं पढ़ सकते, तो इंतजामिया को ये कोशिश करनी चाहिए कि कम से कम उन इख्तबासात के तराजम फौरी तौर पर तमाम जमात को मुहैया कर दिए जाया करें और ये जो बकिया दो महीने में महीने बाकी हैं इनमें ये इख्तबासात ही हैरत अंगेज रूहानी और पाकीज़ा इनकलाबी तब्दीली पैदा कर देंगे। तो इनकी तरफ मुतवज्जे होना चाहिए और ये काम इस वक्त इस बात का इंतजार न करें कि जमातें बकायदा इनके तराजिम कराएं और फिर उनको मुश्तहिर करें, इतने बड़े काम हैं, इतनी इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इतनी एहतियात करनी पड़ती है, फिर भी ऐसी गलतियां रह जाती हैं कि वो तान आमीजी का मुझे बनती हैं बाद लोगों के लिए। इसलिए वो काम अपने वक्त पर होंगे, बड़ी तवज्जो की जा रही है, मुतरजमीन तैयार किए जा रहे हैं अल्लाह ताला के फजल के साथ, और रफ्ता रफ्ता ये काम मुख्तलिफ जुबानों में फैल रहा है। लेकिन इसका इंतजार न करें, जो सरसरी तर्जमे हैं वो कोई ऐसी बात नहीं हुआ करते कि जिनके ऊपर बाकायदा एक्शन लिए जाएं और जवाब तलबियां हों, वो तो सिर्फ एक कोशिश है पैगाम दूसरे तक पहुंचाने की। इस पहलू से उनके तराजम करके, खा अगर छपने छपाने का या उसको नकलें करने का सामान मुहैया नहीं है, तो रिकॉर्ड कैसेट रिकॉर्डर अब हर जमात में मौजूद हैं, उनमें उनको भरकर तो बच्चों को सुना दिया करें। अब इंतजामी उमूर में, ये तो इंतजामी उमूर से बात शुरू हुई थी और एक जरूरी दूसरी बार तरफ तवज्जो फिर गई अपनी जात में, ये बहुत जरूरी बात थी, लेकिन बात इस बात से इस तरह शुरू हुई कि जो बात समझाई जाए उसे दोहराएं और फिर सुने। इस तरह अब जिम्मेदारियों की तकसीम के वक्त आप सब ने, दुनिया की हर जमात ने काम करना है, जिम्मेदारियां तकसीम करें, क्योंकि एक या दो अशख़ास के पास या मिली से अमला के पास भी इतना वक्त नहीं है कि सत्साला जुबली की सारी जिम्मेदारियां अदा कर सके। बहुत काम को फैलाना पड़ेगा, यहां तक कि बईद नहीं कि बाज जगह सारी जमात ही किसी न किसी पहलू से काम की जिम्मेदार हो, यानी चंद ग्रोह किसी काम की तरफ तवज्जो दे रहे हैं, चंद और ग्रोह किसी और काम की तरफ, वह टोलियों में आपको मुंतजमीन बांटने पड़ेंगे। और उसके लिए वक्त तो इतना थोड़ा रह गया कि अभी तक अगर आपने पहली हिदायतों पर अमल नहीं किया तो खुतबा सुनते ही फौरन इस काम पर बैठ जाएं और तकसीम कार करें, फिर उन सबको जिनके सपोर्ट काम किया जाता है तहरीरी इतला सिर्फ ना करें बल्कि उनको बुलाएं या उन तक पहुंचें, उनको बात समझाएं, उनको काम करने का सलीका सिखाएं, उनको बताएं कि इस तरह हमने काम करना है। जैसा कि मैंने बयान किया था, बहुत से काम हम यहां कर रहे हैं और बाकायदा नमूने काम के नमूने बनाकर जमातों तक पहुंचाए जा रहे हैं। मसलन सबसे अहम काम उस साल यानी आइंदा साल किताबों की और लिटरेचर की नुमाइश है, और इसी तरह तस्वीरी नुमाइश है। इस काम के लिए तमाम दुनिया की जमातों में एक फिल्म तैयार करके भिजवाई गई है कि हमने मरकज में इस काम को कैसे किया है, और हर तस्वीर जो दिखाई गई है, हदायत मेरी इनको यही थी और मुझे यही उन्होंने बताया कि उस हदायत पर अमल हुआ है, कि उस तस्वीर पर तशरीबत करें साथ कि ये काम इतना इस तरह वक्त लेता है, ये इस तरीक पर किया गया है, कुरान करीम वो हम कुरान करीम के मुख्तलिफ रुखों को हमने इस तरीक पर सजाया है, इख्तबासात कुरान करीम के इस तरह रखे गए हैं और जुबानों के ऊपर उनके लेबल किस तरह लगाए गए हैं, वर्दी के बहुत तफसीली हदायात पर मुश्तमिल एक वीडियो तैयार करके तमाम ममालिक को भिजवाई गई है। हमारे जो मरकजी नुमाइश सेल के सेक्रेटरी हैं इश्तियाक अहमद साहब शायक, वो आजकल बड़ी मेहनत से तस्वीरों की नुमाइश, चार्ट की नुमाइश, ग्राफ्स जो बनाए गए हैं उनकी नुमाइश, इन सब कामों पर मेहनत कर रहे हैं और तकरीबन ये काम मुकम्मल हो चुका है। तो उम्मीद है कुछ हिस्सा तो गालबन ये भिजवा चुके हैं, कुछ हिस्सा बाकी, बड़ा हिस्सा एक बाकी है जो वो इंशाल्लाह जल्द जमातों तक पहुंच जाएगा। और इन्होंने भी सिर्फ हदायतें देने पर इन्हिसार नहीं किया, बल्कि अगर ये बताया है कि लाइब्रेरियों में जिस तरह या रिसेप्शन में जदीद मुल्कों में जिस तरह तस्वीरों की नुमाइश की जाती है, दरमियान में एक घूमने वाला फर्नीचर का कुछ होता है जिसके नाम मुझे पता नहीं क्या कहलाता है, लेकिन वो एक ऐसा आला है जिसके इर्द गिर्द तस्वीरें हैं, कार्डों के ऊपर लगा दी जाती हैं, जो बड़े बड़े कार्ड होते हैं, और उनको आप घुमाकर तो जिस तरह चाहें, जो चाहें तस्वीर मजे से देखें, जितना चाहें उस पर वक्त लगाएं। वो तस्वीरें अगर दीवार पर लंबी लगाई जाएं तो बहुत ज्यादा जगह घेरेंगी, लेकिन अगर एन मरकज में जिस तरह तौलिया लटकाने वाले वाली चीजें हुआ करती थी हमारे किसी जमाने में, जो या हैट लटकाने के लिए रिसेप्शन हॉल में इंग्लिस्तान में रिवाज हुआ करता था, उस किस्म की चीज है, लेकिन जरा उसमें फर्क है, यानी उसमें घूमने वाले तख्ते से लगे होते हैं। तो उन तख्तों पे किस तरह तस्वीरें सजानी हैं, उसके नमूने बनाकर ये भिजवाएंगे जमातों को, जो आजकल में मेरा ख्याल है एक दो दिन के अंदर इंशाल्लाह ये काम मुकम्मल हो जाएगा। तो इंतजामिया का जहां तक ताल्लुक है, हदायात पूरी या पहुंचा दी गई हैं बाज़ हिस्सों में या पहुंचाई जा रही हैं, और ये काम मैं उम्मीद रखता हूं कि इस महीने के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा, इस महीने में नहीं, फरवरी के आखिर तक बहुत सी बनी बनाई चीजें जमातों को मुहैया हो जाएंगी। अब उनको लगाना किस कहाँ है, किस तरह सलीके से लगाना है, उनकी हिफाजत का क्या इंतजाम करना है, कौन मुंतजिम वहां क्या फराइज सर अंजाम देंगे, किस तरह उन नुमाइशों में अहबाब को दावत दी जाएगी, ये सारे तफसीली काम हैं जो बहुत ही मेहनत तलब हैं, और ये चीजें पहुंचने से पहले इनकी तैयारियां होनी जरूरी हैं। कुछ काम जो 23 मार्च के रोज या उसके बाद शुरू होंगे उनके लिए भी पहले तैयारी करें। मसलन ये जो नुमाइशें हैं, ये बड़े ममालिक में अगर सिर्फ एक नुमाइश एक शहर में लगाई जाए तो काफी नहीं हो सकती, इसलिए अभी से ऐसे इंतजाम करने होंगे कि कुछ अरसा एक शहर में नुमाइश लगे, बाद में सारी नुमाइश को समेट कर किसी और शहर में जहां हॉल या स्कूल की इमारत में बाज़ जगह किराए पर ली जा सकती हैं, या अहमदिया हॉस्पिटल या अहमदिया स्कूल में जगह मुकर्रर की जा सकती हैं, उनमें मुंतकिल किया जाए, और फिर ऐसा फर्नीचर कम से कम वहां जरूर मुहैया किया जाए जो इस ऐसी नुमाइशों के लिए जरूरी होगा। फिर ऐसे माहरीन तैयार किए जाएं जो दौरान साल नुमाइश के साथ घूमें। अब ऐसे माहरीन तैयार करने कोई मामूली बात नहीं, क्योंकि बहुत से ऐसे अहमदी अहबाब हैं जो चंद दिन का वक्त तो दे सकते हैं, सारा साल का वक्त नहीं दे सकते। इसलिए जब आप बैठकर तफसील से इस छोटे से काम पर गौर करेंगे तो आपको मालूम होगा कि बड़ी मेहनत से मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ किस्म के बड़ी उम्र के छोटी उम्र के अहमदी मुखलिसीन बुलवाने पड़ेंगे, उनसे वक्त तय करना होगा कि तुम्हारे शहर में कब ये नुमाइश पहुंचे, और उस अरसे के लिए तुम्हारे शहर के कितने नुमाइंदे हैं जो हमारे पास आकर काम सीखेंगे और मरकजी नुमाइश में आकर वो देखेंगे कि किस तरह काम चलाया जाता है। अब इस काम के लिए भी बड़ा वक्त चाहिए और मेहनत चाहिए, तो इंतजामी पहलुओं से मुझे फिक्र पैदा हो रहा है कि जिस किस्म की तवज्जो की जरूरत थी अभी तक पूरी तवज्जो नहीं दी गई। अलावा जी नुमाइश के सिलसिले में ही हर अहमदी को अभी से अपने दोस्तों को जहनी तौर पर आमादा करना चाहिए कि जमात अहमदिया की एक आलमगीर नुमाइश होने वाली है, और हम यकीन रखते हैं कि तुम्हारे लिए दिलचस्पी का और इल्म इजाफे का मुजीब बनेगी, तुम हमारे साथ चलना और उसके साथ उनके साथ वक्त तय करें और अपना प्रोग्राम साल भर का बनाएं कि कितनी दफा आप कितने दोस्तों को लेकर ऐसी नुमाइशों में पहुंच सकते हैं, ताकि करोड़हा बंदगान खुदा ऐसे हों जिन तक अहमदियत का पैगाम तस्वीरी जुबान में और चार्ट्स की जुबान में और दूसरे ऐसे अंदाज में पहुंचे जो इंसानी फितरत पर ज्यादा गहरा असर करता है। वहां वीडियोज भी चलाई जा रही होंगी मुख्तलिफ किस्म की, वहां स्लाइड्स भी दिखाई जा रही होंगी, वहां मुख्तलिफ दिलचस्पी का लिटरेचर भी मौजूद होगा जो मुफ्त भी होगा, कीमतन देने के लिए भी होगा। रजी के میں یقین رکھتا ہوں کہ جس جو بھی اس نمائش میں جائے گا اس پر اس کا انشاءاللہ تعالی بہت ہی گہرا اثر پڑے گا. موریشس میں جماعت نے ریہرسل کے طور پر ایسی نمائش ایک جگہ لگائی, اور یہ جماعت موریشس کا بہت بڑا کارنامہ تھا. موریشس کی جماعت اللہ تعالیٰ کے فضل سے غیر معمولی طور پر مستعد ہے, اور جب کوئی ہدایت دی جاتی ہے فوری طور پر جماعت اس میں ہمتن مصروف ہو جاتی ہے, یعنی اس کی تعمیر میں. چنانچہ یہ بڑا عمدہ خیال تھا کہ ہم پہلے ریہرسل تو کر کے دیکھیں کہ یہ نمائش کیسی ہوگی, باوجود اس کے کہ اس نمائش کا جو اس سال کے لیے لگانی مقصود ہے شاید دسواں حصہ بھی ان کے پاس موجود نہیں تھا, یعنی ان اشیاء کا, ان کتب کا, ان چارٹس کا, ان تصاویر کا, بلکہ میرا خیال ہے پانچواں حصہ بھی نہیں ہوگا. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک میئر سے اجازت لے کر اس کی ٹاؤن ہال میں یہ نمائش لگائی. جب میں وہاں گیا اور ایک موقع پر جب اس علاقے کے معززین کی دعوت کی گئی تھی تو وہاں بہت سے لوگوں نے مجھ سے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ ہم تو حیران رہ گئے ہیں دیکھ کر کہ جماعت احمدیہ کتنے عظیم کام کر رہی ہے. ایک میئر سے ملاقات کے لیے گیا تو اس میئر نے بھی کہا کہ میں نے تو وہ نمائش دیکھی تو مجھے پہلی دفعہ پتہ لگا کہ اپنی جماعت ہے کیا چیز. حیران رہ جاتی ہے عقل دیکھ کر کہ کس طرح اعزازی خدمت کے طور پر, توئی والنٹیئرز کی خدمت کے طور پر آپ نے کتنے عظیم شان کام کیے ہوئے ہیں. ایسی نمائشوں میں ہمارے پرانے زمانے سے لے کر اب تک کے وقار عمل کی تصویریں بھی ہوں گی, کس طرح بڑے چھوٹے مل کر مسجدیں بنا رہے ہیں, دوسرے خلوق خدا کی خدمت کے رفایامہ کے کام کر رہے ہیں. پرانے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک کے زمانے کی احمدیہ تاریخ تصویری زبان میں دہرائی جائے گی, شہداء کی تصویریں ہوں گی, مظالم کی مختلف صورتوں کی تصویریں ہوں گی. اتنی دلچسپ نمائش ہے اور اتنی وسیع ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے نمونے بھی جب کوئی دیکھتا ہے تو غیر معمولی طور پر متاثر ہوتا ہے. اب جس رنگ میں ہم نے احمدیت پر مظالم کو تصویری زبان میں گزشتہ جلسہ سالانہ پر یہاں دکھایا تھا وہ تو ابھی ایک چھوٹی سی شکل تھی, اب اس کو ہم مکمل کر کے زیادہ وسیع صورت میں دنیا میں پیش کرنے والے ہیں انشاءاللہ. وہاں سے اس نمائش سے جو لوگ گزرے, کچھ مقامی انگریز تھے, کچھ باہر کے دوسرے آنے والے تھے, ان کے متعلق پتہ چلا کہ ہنستے ہنستے داخل ہوتے تھے اور روتے روتے نکلتے تھے, اور بعض انہیں ایسے حیرت انگیز, ایسے زبردست اس پہ تاثرات لکھے ہیں کہ ہم سنا کرتے تھے, باتیں ہمیں بھی پہنچتی تھیں کبھی ریڈیو پر کبھی اخبارات میں, لیکن جو آنکھوں سے ہم نے تصویریں دیکھی ہیں, جو اس کا گہرا دل پر اثر پڑا ہے, اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے. تو جماعت احمدیہ کی جو قربانیاں ہیں ان کی جزا تو خدا دے گا, لیکن حصول جزا کے لیے کچھ طریقے بھی تو اختیار کیے جاتے ہیں. اس کی آخرت کی جزا تو آخرت میں ملے گی, دنیا میں بھی اگر ہم کچھ کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ اس کی روحانی جزا ہمیں یہاں بھی عطا فرمائے گا, اور ان شہداء کے خون کے ہر قطرے کی قیمت ہم وصول کریں گے. اس مقدس خون کا ایک قطرہ ضائع نہیں جانے, ایک ایک خراش جو عقیدان راہ مولا کو آئی ہے اس خراش سے ہم ملکوں ملکوں میں پھول کھلائیں گے. ان کی قربانیوں کی تحریریں ہیں جن سے ایسی تصویریں ابری ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ, جو تمام دنیا میں حیرت انگیز طور پر لوگوں کے دلوں میں روحانیت کے چمن کھلانے والی ہیں. اس لیے اس کے لیے اس کی طرف جس طرح ہم توجہ کر رہے ہیں, اگر جماعتیں اس سے استفادے کے لیے تیاری کر لیں تو وہ حیران ہو جائیں گی دیکھ کر کہ خدا تعالیٰ کے فضل سے ان کا کتنا گہرا اثر اور کتنا وسیع اثر پڑتا ہے, اور کس طرح دشمن دوستوں میں تبدیل ہوتے ہیں. اس لحاظ سے جن دوستوں کو آپ نے بلانا ہے اس میں دشمنوں کو بھی شامل کریں. جب میں لفظ دوست استعمال کرتا ہوں تو میری مراد عام محاورے میں دوست کے لیے عام انسان ہیں, یہ نہ کریں کہ دشمنوں کو محروم رکھیں. جو شدید معاندین ہیں اگر وہ بھی تیار ہوں سوائے اس کے کہ اس کے نتیجے بعد بعض ملکوں میں ان سے شرارت کا اور فتنے کا خطرہ ہو, وہاں مومن کی طرح فراست سے کام لیتے ہوئے, مومن والی فراست سے کام لیتے ہوئے ایسے لوگوں کو نہ بلائیں بلکہ ہوا بھی نہ لگنے دیں ان کو کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن جن ممالک میں ضمیر کی آزادی ہے وہاں شدید سے شدید دشمن کو بھی بلائیں, اس کو دکھائیں تو صحیح کہ ہو کیا رہا ہے, احمدیت ہے کیا چیز. وہ جو آنکھوں سے دیکھنے کا اثر پڑتا ہے وہ سنی سنائی باتوں کا اثر نہیں پڑا کرتا اور نہ وہ کتابیں پڑھنے سے حاصل ہو سکتی ہے بات. اس لیے خدا تعالیٰ کے فضل سے اگلی صدی کے لیے بہت ہی عظیم زاد راہ آپ کے لیے تیار ہے. اس کو استعمال کرنا اس ساری صدی میں یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت پر منحصر ہے اور اس کا آغاز ان نمائشوں کے ذریعے ہوگا. اور میں امید رکھتا ہوں کہ ان نمائشوں میں جب آپ ان ذرائع کو استعمال کریں گے تو سال کے اختتام سے پہلے پہلے خدا تعالیٰ کے فضل سے آپ کی جھولیوں میں کثرت سے روحانی پھل گرنے شروع ہو جائیں گے. نمائشوں کو سارا سال مؤثر بنانے کی خاطر ایک طریق یہ بھی اختیار کیا جائے کہ مختلف معززین کے دن بنائے جائیں اور ان معززین کے نام پر اس دن نمائش ہو, ان کے لیے خاص احترام اس دن کا کیا جائے, ان کی تصویریں کھینچی جائیں, اخباروں کو نمائندوں کو اطلاع دی جائے, ٹیلی ویژن اگر ہے تو اور ریڈیو ہے تو ریڈیو کے اور ٹیلی ویژن کے نمائندوں کو اطلاع کی جائے, اور ہفتے میں ایک دن یا جہاں جماعت زیادہ دن بنا سکتی ہے تو بڑے بڑے معززین کو وہاں ان کے نام کے دنوں میں بلائیں. یہ دنیا دار لوگ ہیں, یہ ان میں بڑے بڑے شریف بھی ہیں مگر دنیا دار ہیں, اور جب تک نام و نمود ساتھ شامل نہ ہو یہ ایسے مواقع پر جو خالصتاً مذہبی مواقع ہیں زیادہ توجہ نہیں کیا کرتے. تو اگر ان کی خاطر ان کو بلایا جائے کہ ہم آپ معزز ہیں, آپ ہمارے باعث عزت باعث صد احترام مہمان ہیں, تو پھر یہ ضرور وقت نکال لیا کرتے ہیں. تو اس طرح یہ نمائشیں ساری دنیا کے ان ممالک میں جہاں احمدی ان نمائشوں کو دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی سارا سال اثر پیدا کریں گی, اور نیوز میڈیا کے لیے یعنی جو پیغام رسانی کے وسائل ہیں ان کے لیے دلچسپی کا سامان رہے گا ان شخصیتوں کی وجہ سے. آپ کی وجہ سے وہ توجہ نہیں کریں گے لیکن آنے والی کی وجہ سے توجہ کریں گے. تو امید رکھتا ہوں ان کے ساتھ اور بھی لوگ آئیں گے, اور انشاءاللہ تعالی احمدیت کے حق میں خیالات تبدیل ہوں گے, رائیں تبدیل ہوں گی, اور ایک عظیم شان روحانی انقلاب برپا ہوگا. اب جہاں تک لٹریچر کی ترسیل کا تعلق ہے, اس سلسلے میں بھی بہت سے خلا دکھائی دے رہے ہیں. جیسا کہ آپ جانتے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ 50 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کے مکمل تراجم پیش کیے جائیں گے. ان تراجم کو آگے احباب تک پہنچانا اور اس کے نتیجے میں جو ہمیں خرچ شدہ رقم واپس ملتی ہے اسے پھر آئندہ نئے قرآن کریم شائع کرنے کے لیے استعمال کرنا, یہ ایسا کام ہے جس کے نتیجے میں کثرت کے ساتھ قرآن کریم دنیا میں پھیلنے شروع ہو جائیں گے. یہ بڑے محنت کا کام ہے. جن تراجم کو ہم نے شائع کیا ہے ان کی ابھی تک نکاس کی رفتار تھوڑی ہے, لیکن جہاں حکمت کے ساتھ بعض احباب جماعت نے دلچسپی لی ہے وہاں ایسی جگہوں میں جہاں پہلے خیال تھا کہ یہاں قرآن کریم کا نکاس نہیں ہو سکتا, بڑی تیزی سے نکاس شروع ہو گیا ہے. یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ یہ خود اپنی جگہ بناتی ہے, اور اگر انسان غفلت نہ کرے تو اس کتاب کے پھیلاؤ کو اس کی اشاعت کو روکا نہیں جا سکتا. اس لیے ان زبانوں میں جہاں جہاں بھی پڑھنے والے موجود ہیں ابھی سے مختلف جماعتوں کو تیاری کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح قرآن کریم کو جلد از جلد शाया कर देंगे और उसके नतीजे में फिर जो रकम हासिल होगी फिर एक और पुराने फिर मजीद नुस्खे फिर मजीद नुस्खे इस तरह प्रिंट के बाद प्रिंट निकलने शुरू हो जाएंगे। एक और शक्ल ये भी होगी कि इसके नतीजे में जो रकम मिलेगी उससे हम मजीद जुबानों में भी तर्जमे करने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मेरे जहन में तो ये नक्शा था जब मैंने तहरीक की थी कि जिन खानदानों या जिन जमातों की तरफ से ये कुरान करीम शाया किए जा रहे हैं हमेशा के लिए उनके लिए एक सदका जारिया बन जाए और कुरान करीम की जो आमद हो किसी और मसरफ पे खर्च ना हो उसी से फिर मजीद कुरान करीम फिर मजीद शाया होते चले जाएं। अगर मजीद जुबानों के लिए इस अरसे में मजीद खानदान या मजीद जमातें तैयार ना हुई तो फिर इसी रकम को बाद मजीद जुबानों के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि उम्मीद रखता हूं इतनी रकम जरूर इंशाल्लाह बचनी शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ताला के फजल के साथ बहुत ही अजीम शान काम हो चुका है। इस काम से इसकी शायान शान अजीम शान नतायज हासिल करना ये जमात का काम है। इसके लिए ज़हनी तौर पर और अमली तौर पर तैयार रहें। तरसील व इशात के सिलसिले में दूसरी बात यह है कि जो इख्तबासात कुरान करीम से या अहादीस से या हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की कुतुब से लेकर शाया किए जा रहे हैं उनका अक्सर हिस्सा हदीयतन पेश होगा और जिन जुबानों में वो इख्तबासात शाया किए जा रहे हैं वो बाज़ ऐसी हैं जो मुख्तलिफ ममालिक में बोली जाती हैं। इसलिए जिस जिस मुल्क में उस जुबान में जितने जितने इख्तबासात की जरूरत है वो तो तय कर लें। कई दफा लिखा गया है लेकिन बाद ममालिक ने मुस्तैदी से जवाब दिया लेकिन बहुत से ऐसे ममालिक हैं बाद नहीं बल्कि बहुत से हैं जिन्होंने आज तक ये तकलीफ भी नहीं की कि अपनी जरूरत को मुअय्यन करें। और अजीब बात है कि उनमें बड़े बड़े मुस्तैद भी हैं अल्लाह के फजल के साथ बड़ी मुखलिस जमातें भी हैं जहां से हमने ये सुस्ती देखी है हालांकि बाकी कामों में वो मुस्तैद हैं। तो जैसा कि मैंने बयान किया था ना बाद इंसान के शोबे इंसानी फितरत जो है बड़ी वसी चीज है उसके बाद शोबों पर रोशनी होती है बाद शोबों पर सराह होता है बाद जगह से झूठ खत्म हो गया है बाद जगह झूठ जारी है। तो सुस्तियों का भी यही हाल हुआ करता है बाद लोग बाद जिंदगी के शोबों में मुस्तैद हो चुके होते हैं बाद दूसरों में सुस्त होते हैं। इसलिए उन पर इस तरह का हरफ तो नहीं कि उन्होंने बिल्कुल अदम अतात की है या ताबुन नहीं किया लेकिन मैं मुतवजह जरूर करना चाहता हूं कि इतना अहम काम है इससे गफलत अच्छी नहीं है। आप जल्द अज जल्द तयीन करें कि आपको कितनी जरूरत है। हमने खुद आपकी जरूरत को अंदाजन मुअय्यन किया है इसलिए हम आपके अब सवाल का आपके जवाब का इंतजार नहीं करेंगे आपको हम जरूर किताबें भेजेंगे लेकिन हो सकता है वो आपकी जरूरत से कम हो और ये जरूरत मुअय्यन करने के लिए जरूरी है कि आप पहले इसकी तकसीम का इंतजाम करें। ये जवाब नहीं चाहिए कि एक अमीर को चिट्ठी मिलती है उसी वक्त लिख के भेज दे कि जी हमें 5,000 भेज दें। इस किस्म की चिट्ठियों का हम पर कोई असर नहीं पड़ता ना पढ़ना चाहिए अकलन क्योंकि वो चिट्ठी देखते ही पता चल जाता है कि इन्होंने क्या हरकत की है। चिट्ठी इस किस्म की चाहिए कि हमने जायजा लिया है इतना बड़ा इलाका है इसकी तकसीम का की जमात में इतनी इस्तेताअत मौजूद है दस्ती तकसीम के लिए इतने कारकुनान मुहैया होंगे और वो इतनी देर में इतने घरों तक ये किताब पहुंचा सकते हैं और डाक के जरिए तकसीम के लिए का इंतजाम इतना खर्च चाहता है इतना खर्च पोस्टिंग पर होगा और इतने अहमदी दोस्त तैयार हैं कि वो अल्लाह ताला के फजल के साथ इतनी इतनी कुतब इस अरसे में तकसीम पोस्ट कर देंगे। इस तरह काम होगा तो फिर तसल्ली होगी फिर हमें समझ आएगी कि हाँ वाकई आपने माना खेज काम किया है। वरना खाली ऐसे जवाब तो कई आ चुके हैं कि जी हमें आप 10,000 भेज दें 20,000 भेज दें बिल्कुल बेमानी बात है, क्यों भेज दें जब तक ये यकीन ना हो कि आप उसको तकसीम करने के लिए तैयार बैठे हैं और सारा इंतजाम मुकम्मल है, उस वक्त तक आपका जो आपका कानून अखलाकी हक नहीं है कि जवाब देकर अपने अपनी जिम्मेदारी को टलाने की कोशिश करें। इस सिलसिले में बाज़ जगह बड़ा अच्छा काम शुरू हो गया है, लेकिन वो भी उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने नुमाइंदा भेजा और उनको समझाया। मसलन मुनीरुद्दीन सब शम्स ने कुछ 2-3 माह पहले हिंदुस्तान का दौरा किया, तमाम इलाकों में वहां खुद पहुंचे, मुंतजमीन को बुलाया, उनको समझाया, फिर वहां इंतजाम मुकम्मल किए, तकसीम कार मुकम्मल की। वो हिंदुस्तान जहां इससे पहले महीनों में जवाब नहीं आया करते थे, वहां अब ऐसा मुस्तैद इंतजाम जारी हो गया है कि जिस तरह शुआएं पढ़कर मुनकिस होती हैं वापस, इस तरह खत मिलते ही उन जमातों की तरफ से जवाब आ रहे हैं और खुशियों की खबरें मिल रही हैं कि खुदा के फजल से अब हम इंतजाम मुकम्मल करके तैयार बैठे हैं और ये काम हो गया है। तो इसलिए समझाने की बड़ी जरूरत है। बाज इलाकों में तो हम ये नुमाइंदे मरकजी भिजवा सके हैं, लेकिन बाज इलाकों में नहीं भिजवा सके। लेकिन वहां ये तरीकेकार तय हुआ था कि जिन ममालिक के सुपुर्द बाज छोटे ममालिक किए गए हैं, वो खुद अपने नुमाइंदे वहां भिजवाकर उनको समझाएंगे। इस जिम्मन में मुझे अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली, यानी तसली बश रिपोर्ट नहीं मिली। मसलन इंग्लिस्तान है, अगर इंग्लिस्तान के सुपुर्द बाज छोटे ममालिक थे तो इनका फर्ज था कि वहां अपने नुमाइंदे भेजें, वो ना सिर्फ समझाएं बल्कि अपने सामने कुछ नमूने तैयार करवा के आए ताकि तसल्ली हो कि बालिग नजरी से काम हो रहा है। मोमिन की शान ये तो नहीं कि गले से काम उतारे, मोमिन की काम शान तो यह है कि गले से काम ना उतरने दे जब तक तसल्ली ना हो जाए कि यह काम सही तरीक पर जारी हो चुका है। इसलिए इन सब उमूर में जहां जहां खला है उन पर नजर डालें, जहां जहां खला मुझे नजर आता है वो उस वक्त उसी वक्त उनको चिट्ठी लिखकर मुतनबे कर दिया जाता है। लेकिन सारी दुनिया के इन फैले हुए ममालिक में तफसील से इंसानी नजर नहीं पहुंच सकती, लेकिन जो करीब हैं उनकी नजर ज्यादा आसानी से तफासील तक पहुंच सकती है। इसलिए उमरा और सदरान और दूसरे मुंतजमीन जो करीब की दुनिया में अपने खला देखते हैं उनको भरने की भी कोशिश करें और अपने आला अफसरान को भी उनसे मुत्तले करें और मुझे भी मुत्तले करना शुरू कर दें कि हमने इस पहलू से ये इंतजामी खला देखा है, ताकि मैं भी उनको मजीद मुतवज्जे करूं। जहां तक असूली हदायतों का ताल्लुक है, ये मिसालें मैंने आपके सामने रखी हैं, तफसीली काम का तो मैंने बयान किया था, वक्त ही नहीं है। इसकी रोशनी में फिर आप अपने काम को बढ़ा लें और फैला लें और हर शोबे में इसी तरीक पर तर्ज अमल अख्तियार करते हुए अल्लाह ताला के फजल के सहारे दुआएं मांगते हुए अपने खलाओं को भरने की कोशिश करें और खूब तैयार हो जाएं। जिस दिन हम अगली सदी में दाखिल हों उस दिन से पहले पहले इंतजामी लिहाज से हम पूरी तरह तैयार हो चुके हों, फिर काम में सर ढूंढने का वक्त होगा। सर ढूंढना तो गलत इस्तेमाल है मुहावरे का, मतलब है कि सर फेंक कर बरकट दौड़ा दौड़ा जाता है, जिस तरह उस तरह सर फेंक कर आप फिर काम में तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ना शुरू कर दें। इस जिम्मे में चंदों के बकायों के मुतल्लिक भी मैं याद दहानी कराता हूं। 7 साल जुबली के चंदों की वसूली की तारीख मैं बढ़ाता रहा ताकि जो कमजोर हैं उनको भी मौका मिलता रहे, यहां तक कि मैंने जहां तक मुझे याद है 31 दिसंबर 1987 मुकर्रर की थी कि इस वक्त तक आप सब बकाया अदा कर दें। लेकिन मैं जानता हूं बाग लोग कोशिश के बावजूद भी इस वक्त तक बकाया अदा नहीं कर सके, इसलिए बाजों ने मुझे लिखना शुरू किया है कि हमें महरूमी का शदीद एहसास पैदा हो रहा है, इसलिए हमें एक साल की और मोहलत दे दें। तो ये कोई ऐसी मोहलतें तो नहीं है कि जो आखिरी हर्फ बन चुकी हों, क्योंकि नेकी के काम में जब मोहलतें जब वक्त मुकर किए जाते हैं तो सिर्फ ये मुराद होती है कि तहरीक हो, जो सब कुछ ले जाने वाले हैं उनकी तवज्जो हो और वो सब कुछ ले जाने की कोशिश करें, जो पीछे रहने वाले हैं उनको साथ मिलने का मौका दिया जाता है। तो अब फिर इनको अब मैं एक साल मजीद इजाफा करता हूं कि 31 दिसंबर 1999 तक भी जो दोस्त अदा कर देंगे उनका, जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैं यही समझूंगा कि उनका चंदा वक्त के अंदर ही अदा हो गया है। बाकी जो बकाए रह जाएंगे वो अल्लाह ताला माफ करे और फिर हमारी गफलतों में पर्दापोशी करे। जिनके बकाए रह जाएंगे, अगरचे मुद्दत गुजर चुकी होगी लेकिन उनको बाद में भी अदा करने चाहिए, ये मैं उसूली बात समझाना चाहता हूं। नमाज का एक वक्त मुकर्रर है, किताबें मौकूत है, लेकिन जब वक्त के अंदर ना पढ़ी जाए तो कजा का हुक्म है। इसीलिए जो खुदा से वादे किए जाते हैं वो भी फर्ज की तरह शुमार होने चाहिए, और कुरान करीम से पता चलता है कि इन वादों की बड़ी अहमियत होती है अल्लाह ताला के नजदीक। इसलिए जिन लोगों ने घबराहट के खत लिखे हैं मैं उनके साथ पूरी तरह मुत्तफिक भी हूं और उनके लिए परेशान भी हूं। जिनको एहसास और शऊर है वो जानते हैं कि हमने वादा खुदा से किया था, कोई मामूली बात नहीं है, हमारे हालात ने इजाजत दी हो या ना दी हो, ये वादे से पूरा करने से महरूमी एक ऐसा दाग है जिसकी तकलीफ होनी चाहिए। लेकिन अगर वक्त के अंदर ना पूरा हो सके और मजबूरी हो तो गुना तो नहीं होगा, लेकिन इस खला को उस तरह पूरा करना चाहिए जिस तरह छुटी हुई नमाजों की कजा अदा की जाती है, की कजा की जाती है। तो बाद में भी दें लेकिन अपने तौर पर अपनी जिम्मेदारी से। जहां तक निजामे जमात का ताल्लुक है, ये चंदे का वक्त खत्म हो चुका होगा, मुमकिन है बाद बकाए ऐसे रह जाए अदाय बिलों की अदायगी के जिनमें ये इस्तेमाल भी हो जाए, लेकिन ना भी हो तो जहां तक आपकी जात का ताल्लुक है आपका वादा खुदा से पूरा हो जाएगा और आपको इससे इत्मीनान कल्ब नसीब होगा। आखिरी बार फिर मैं अर्ज करूंगा कि बहुत से हमारे बदादात की गठरियां हैं जो हम पर सवार हैं। हर साल के आज में इंसान वादे किया करता है अपने नफ्स से, बाद दफा अपने खुदा से, बाद दफा अपने दोस्तों से कि ये कमजोरियां मैं छोड़ूंगा। इस साल के आगाज पर मुझे ख्याल आया कि ये तहरीक करूं कि फलां बाज बदियां छोड़ दें। वैसे तो हर बदी छोड़नी चाहिए, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि इसको अगली सदी के ताल्लुक में बयान करूंगा, जैसा कि मैं पहले भी करता आ रहा हूं। अगली सदी से पहले अपने जिस तरह आप बच्चों से वादे लेंगे उस तरह अपने नफ्स से भी वादे लें और उसके लिए दुआ शुरू कर दें। बाद आदतें तरक करना आसान नहीं हुआ करता, बड़ी हिम्मत चाहिए, और बाद आदतें ऐसी हैं जो आप एक दफा छोड़ भी दें तो फिर दोबारा आ जाया करती हैं, इसलिए बड़ी दुआओं की जरूरत है। गुनाहों की जो तमसील बाइबल में पेश की गई है और शैतान को गुनाह मुजस्सम के तौर पर दिखाया गया है, वो तमसील सांप की शक्ल में पेश की गई है। बहुत सी ममासलतें सांप को शैतान के उस तसव्वुर से है जो मजहबी दुनिया में पाया जाता है, लेकिन एक ममासलत गुनाह के साथ शैतान को यह है कि सांप हर साल एक केंचली उतारता है, यानी अपनी एक खाल को खींचकर कांटों में उलझकर पूरी तरह उतार के अपने जिस्म से अलग खींच देता है। उसका यह मतलब नहीं होता कि उसकी खाल अब खत्म हो गई, नीचे से एक नई खाल निकलाती। तो गुना बदबख्त को भी ये किसी तरह यह तरीका आ गया है, वो एक खाल उतारता है तो नीचे से दूसरी खाल निकलती है। इस तरह गुनाहों के भी तहें होती हैं, यानी एक गुनाह को आप खींचकर उतारेंगे तो नीचे से पाक दामन नहीं निकलेंगे, बल्कि उसके नीचे एक और भी गुनाह को पाएंगे। जिस तरह सर्दियों में बाज़ ग़रीब ठंडे कपड़े 15-20 पहन लेते हैं और उनका और चारा नहीं होता। इंसान जो रूहानी लिहाज से फलाकत ज्यादा हो, उसने गुनाहों के 15-20 या ज्यादा कपड़े पहने होते हैं। तो एक कपड़ा आप फाड़ के फेंकेंगे तो नीचे से दूसरा भी निकल आएगा, फिर तीसरा भी निकल आएगा। बड़ी मेहनत का काम है, बड़ी तवज्जो का काम है और दुआ के बगैर मुमकिन नहीं। ये आदत बड़ी बुरी चीज है, गुनाह की हो जिस चीज की भी हो, बहुत ही जालिम चीज है, इंसान को अपना गुलाम बना लेती है। इसलिए आदतों से आजादी हासिल करें, फिर आप हल्के बदन के साथ अल्लाह ताला के फजल और रहम के साथ अगली सदी में दाखिल हो सकेंगे, वरना आपका बदन भारी रहेगा और बाकी सफर मुश्किल होगा। इसलिए इस सफर के लिए तकवा का ज्यादा राह चाहिए, जो आपको अंदरूनी ताकत मुहैया करेगा। तकवा के बगैर आप बदियों से छुटकारा नहीं पा सकते। तो तकवा का मेयार बढ़ाएं, खुदा से दुआ मांगें और कोई अहमदी ऐसा ना हो जो अगली सदी में इस हाल में दाखिल हो कि उसने अपने गुनाहों में से कुछ भी ना छोड़ा। और खुदा करे अक्सर अहमदी ऐसे हों कि सब नहीं तो अक्सर गुनाह वो इस सदी के दामन में पीछे छोड़ जाएं और पाक और साफ होके सहाबा की तरह साफ और पाक होकर अगली सदी में दाखिल हों, ताकि इस किनारे से एक तरबियत का नया दौर शुरू हो जाए और वो तरबियत का दौर फिर अगली सदी तक अगली नस्लों के काम आता रहे। खुदा करे कि ऐसा ही हो और अल्लाह अपने फजल से हमारी तौफीक को बढ़ाता चला जाए।
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa na'udhu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر